ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद तीसवा अध्याय प्रचेताओं के कार्यकलाप श्लोक संख्या 31।
वरम वृणीमहे थापि नाथ त्वत्परतः परात् नयन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप परम प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है, अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। तात्पर्य: प्रचेताओं को भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भक्त जन तो भगवान की उपस्थिति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की थी और वे भगवान से वर प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने पिता का सिंहासन, श्रेष्ठतर पद प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए तो वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने यही कहा, हे स्वामी, मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। भक्त की यही वास्तविक स्थिति होती है। भक्त तो भगवान के समक्ष रहना चाहता है, चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र और उनकी सेवा करना चाहता है। भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा वर है। भगवान ने प्रचेताओं से वर मांगने के लिए कहा था, अतः उन्होंने कहा, हम कौन सा वर मांगें? भगवान अनंत है, अतः वर भी अनंत हैं। तात्पर्य यह है कि यदि कोई वर मांगता है तो उसे अनंत वर मांगने चाहिए। इस श्लोक के त्वत्परतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान को परतः परात हैं। निर्गुण ब्रह्म तेज इस जगत से परे है और इसे परम पद कहा जाता है। आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान के निराकार तेज में मिल जाना परम पदम कहलाता है, किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है जो भगवान की संगति है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवत 1:2:11। परम सत्य का बोध पहले निर्गुण ब्रह्म, फिर परमात्मा तथा अंत में भगवान के रूप में होता है। इस तरह है भगवान परतः परात हैं, अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार से ऊपर हैं। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परतः परात का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है और ब्रह्म कहलाता है, किंतु श्री भगवान तो पर ब्रह्म कहलाते हैं। अतः परतः परात का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, प्रचेताओं की योजना कुछ ऐसी मांग प्रस्तुत करने की थी जो अनंत हो।
भगवान की लीलाएं, गुण रूप तथा नाम सभी अनंत हैं। इन सब का कोई अंत नहीं है, किंतु यदि सारे जीव परमेश्वर की अनंत शक्तियों को सुनने में लग जाएं, तो वे अनंत से सीधे जुड़ जाते हैं।
श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है। प्रचेतागण भगवान को अनंत शब्द से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के संदर्भ में जो भी कुछ है वो सब अनंत है। उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनका यश इत्यादि। इसलिए भगवान शब्द की परिभाषा ही यही है, भगवत, जिनके पास सारे भग या ऐश्वर्य है। पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या इस तरह करते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। भगवान मतलब वो है जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। और ये कौन से हैं ऐश्वर्य? पहला है ऐश्वर्य नाना प्रकार के धन इत्यादि, दूसरा है वीर्य मतलब शक्ति, तीसरा श्रेय या यश, यश मतलब प्रसिद्धि, चौथा है श्रेय मतलब सौंदर्य, पांचवा है ज्ञान और छठा है वैराग्य। तो ये छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं जिनकी वजह से भगवान कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। कृषि भूवाचक शब्द नस् निर्वृति वाचक, जो नस कृष और न, ये दो अक्षरों को जोड़कर कृष्ण शब्द बन जाता है। परम ब्रह्म अभिधीयते, तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म। जब इन दो अक्षरों को जोड़ा जाता है तो यह पर ब्रह्म को संबोधित करता है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। कोई भी व्यक्ति आकर्षक तब होता है जब उसके पास इन छह ऐश्वर्यों में से एक या ज्यादा ऐश्वर्य ज्यादा मात्रा में रहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, जैसे टाटा बिरला है, तो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, कोई ओलंपिक्स में इसमें बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता हो, सबके लिए बहुत आकर्षक बन जाता है। बहुत बड़ा पहलवान हो, बड़ा आकर्षक बन जाता है लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है तो उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं, उसके साथ में तस्वीर खींचना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, जैसे कि सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री, तो सभी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, उनको जाके देखना चाहते हैं, सिनेमा देखते हैं, कई 3 बार 10 बार वही सिनेमा देखते हैं, और उनके फैन क्लब तैयार हो जाते हैं, मतलब उनके उपासक, उनके उपासनों की संगठनाएं शुरू हो जाती है। तो ये जो सौंदर्य है ये भी बहुत आकर्षक हो जाता है। और उसके बाद में कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, कोई आइंस्टाइन है, किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है, बड़ी बड़ी डिग्रियां किसके पास हैं, तो ये भी व्यक्ति आकर्षक बन जाता है। और फिर वैराग्य, कोई बहुत ही विरक्त है, सब कुछ उसने त्याग किया है, तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इसने सब कुछ त्यागा है। इसलिए सन्यासी के पास, ब्रह्मचारी के पास कई बार लोग आके पूछते हैं, आपने सब कुछ त्याग दिया? तो लोग आकर्षित हो जाते हैं कि ये कोई असाधारण चीज है सब कुछ त्यागना। तो यह भी एक व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। तो संसार के जो लोग हैं उनके पास ये जो भी ऐश्वर्य हैं, अगर हैं भी तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। किसी कोई व्यक्ति सुंदर है तो शायद बुद्धिमान नहीं हो, बुद्धू हो, और कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान हो सकता है बड़ा कुरूप हो, और बुद्धिमान भी हो सुंदर भी हो सकता है गरीब हो। सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है, गरीब भी है, लेकिन वैराग्य बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे देखते हैं कि 6 ऐश्वर्य पूर्ण किसी में होने बहुत मुश्किल है, और हो भी तो मनुष्य में कितने हो सकते हैं, बहुत कम मात्रा में। लेकिन भगवान वो व्यक्ति हैं जिनमें ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्णता में विद्यमान हैं, जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य अनंत मात्रा में है, असीमित अवस्था में, ये है भगवान। तो आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य किस प्रकार से अनंत मात्रा में विद्यमान है। सबसे पहले है ऐश्वर्य धन। हम यहां देखते हैं कि कोई टाटा बिरला है जिसके पास कोई 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन ये तो छोटी सी पृथ्वी, छोटा सा एक लोक है पृथ्वी लोक, और ऐसे लोकों में से अनंत कोटि लोक हैं इस एक छोटे से ब्रह्मांड के अंदर, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जिसको कि भौतिक जगत कहते हैं, और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परे भगवान का धाम है जो इससे बहुत बड़ा है, और इन सब लोकों के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोकों का स्वामी हूं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो बताया जाता है कि उनके कुटुंब के सदस्यों की संख्या 56 करोड़ थी, 5, 10, 20 नहीं। अगर हमारे घर में 4, 5, 10, 20, 25 लोग होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उनको संभालना और भी बड़ी बात हो जाती है, और संभालने के बाद भी ये सब लोग जो कुटुंब के वरिष्ठ हैं उनके आज्ञाकारी बने वो और भी ज्यादा कठिन है। कई महीने पहले हमने अखबार में खबर पढ़ी थी कि कर्नाटक में कोई गांव है जिसमें एक संयुक्त कुटुंब है, जॉइंट फैमिली, जिसमें शायद 100 लोग या 200 लोग ऐसे कुछ लोग रहते हैं, और ये इतनी बड़ी खबर है कि इसके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल छपते हैं अखबारों में और पत्रिकाओं में, क्योंकि आजकल ये दिखने में नहीं आता। 3-4 लोगों के कुटुंब को एकत्र रखने में कितनी परेशानी होती है, तो फिर 10-20 लोगों की बात तो क्या, और 100-200 की का कुटुंब कोई बना रहे, टिका रहे, सभी लोग एक साथ रहें, एक ही इमारत में, एक ही बिल्डिंग में रहें, कितनी बड़ी बात है आजकल के हिसाब से। लेकिन कृष्ण भगवान के कुटुंब में कितने लोग थे, 56 करोड़ लोग थे, और ये 56 करोड़ लोग सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ आज्ञाकारी कुटुंबों के सदस्य के रूप में रहते थे, और इन सारे कुटुंब के सदस्यों को अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था करने के लिए उनके लिए अलग अलग निवास स्थान बनाए। और निवास स्थान तो क्या, ऐसे नहीं कि किसी को एक छोटा सा कमरा दे दिया घर में, 9 लाख बड़े बड़े महल थे, और हर एक महल नाना प्रकार के रत्नों से, हीरों से सुशोभित, और नाना प्रकार के कीमती से कीमती पत्थरों से बने हुए हर एक महल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथ साथ कृष्ण भगवान के 16,108 पठरानियां थी, और कृष्ण भगवान के हरेक रानी से 10 पुत्र हुए, और इन 10 पुत्रों के और 10-10 पुत्र हुए, और इनके जो भी रानियां थीं, कृष्ण भगवान की रानियां, उनके पुत्रों की रानियां, उनके पौत्रों की रानियां, इन सब के और कृष्ण भगवान के जो गहने थे, आभूषण थे इत्यादि, वो इतने मूल्यवान, इतने अद्भुत, इतने आकर्षक कि कुबेर जो कि देवताओं के खजांची हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी बताते हैं उनकी कल्पना के बाहर ऐसे ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में था। साथ साथ में कृष्ण भगवान के दरबारों में इतने प्रकार के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम हुआ करते थे, नृत्य के कार्यक्रम हुआ करते थे कि इनकी कल्पना भी स्वर्गलोक में कोई नहीं कर सकता था। स्वर्गलोक में क्या होता है? नंदन कानन में इंद्रदेव जो हैं, वो अप्सराओं से उनको संतुष्ट रहना पड़ता है, और अप्सराएं बहुत सुंदर मानी जाती हैं। अप्सराओं के का सौंदर्य इतना है कि पृथ्वी लोक की जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हैं, वो तो उनके सामने बिल्कुल मिट्टी के बराबर है, इतने सुंदर होते अप्सरागण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रानियां और उनके दरबार में जो भी नृत्य करती थी, वो इतने सुंदर थी कि उनके सामने अप्सराओं का सौंदर्य कुछ भी नहीं था। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि गौरी शब्द का अर्थ है सफेद, और अप्सरागण बड़े सफेद माने जाते हैं गौरी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दरबारों में जो नृत्य और कार्यक्रम करने वाली थीं, वो इतने सफेद थीं कि दूध या कमल के जो वो भाग होते हैं वो भी शर्मा जाते थे। मतलब ऐसे ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण के पास था। और जहां तक वृंदावन का ऐश्वर्य है, ये तो गुप्त ऐश्वर्य है, क्योंकि द्वारका की विशेषता है ऐश्वर्य और वृंदावन की विशेषता है माधुर्य। मतलब वृंदावन की लीला में भगवान श्री कृष्ण ये मधुरता या लीला के मिठास का स्वाद लेते हैं, जो कि द्वारका में नहीं होता। द्वारका में ऐश्वर्य ज्यादा मात्रा में विद्यमान है, लेकिन इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य है, लेकिन केवल वो लोग देख सकते हैं जिनकी दृष्टि है। लेकिन वृंदावन में माधुर्य कम है और ऐश्वर्य सभी को देखने के लिए मिलता है। तो वृंदावन का ऐश्वर्य कैसा है? बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत में वर्णन करते हैं कि जो गोपियां हैं, उनके चरणों में जो नुपुर होते हैं, वो चिंतामणि से भी ज्यादा मूल्यवान है। और आगे बिल्वा मंगल ठाकुर बताते हैं कि जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं, वो भी पारिजात वृक्षों से भी ज्यादा मूल्यवान और सुंदर होते हैं। वृंदावन के जो गाय होते हैं, वो सुरभि गाय, गोलोक वृंदावन के सुरभि गाय के समान होते हैं। मतलब ये है वृंदावन का ऐश्वर्य। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य एक ऐसे सागर के समान है जिसकी तुलना या जिसकी गणना, जिसका नाप तोल हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान के ऐश्वर्य के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय हमारे लिए अनंत नहीं है, समय सीमित है श्रीमद् भागवत क्लास में, और ऐसे और 5 ऐश्वर्यों का चर्चा करना है। इसलिए अगले गुण में चले जाएंगे। अगला गुण कौन सा है? अगला गुण है वीर्य या शक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास अद्भुत शक्ति है, शारीरिक शक्ति, उसको बलियान कहते हैं। तो कृष्ण भगवान की शारीरिक शक्ति कितनी है? अनंत है। भगवान श्री कृष्ण अपने अंशों के माध्यम से इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और हरेक ब्रह्मांड उनके लिए एक रुई के बीज के बराबर प्रतीत होता है, मतलब कुछ भी नहीं। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के असुर का वध किया, जो कि बहुत विराट था, बहुत शक्तिशाली भयंकर असुर था, उस समय गोपियों ने कहा कि देखो कृष्ण कितना शक्तिशाली है कि उसने इस भयंकर असुर अरिष्टासुर का ऐसे वध किया, उसे ऐसे उठाया आसानी से और फेंक दिया मानो कि उसने छोटे से कपास के टुकड़े को उठाया हो और फेंक दिया हो। याद रखिए कि उस समय कृष्ण भगवान एक छोटे बच्चे के बराबर थे और बच्चे की शक्ति कितनी होती है, ज्यादा नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान चाहे बाल्यावस्था में हो, पौगंडावस्था में, किशोर अवस्था में, युव अवस्था में या किसी भी अवस्था में, उनकी शक्ति उतनी ही रहती है, अनंत। इसलिए भगवान ने अपने अनंत शक्ति का एक लेश मात्र प्रदर्शन किया। अरिष्टासुर को उठा के फेंकना यह भगवान की शक्ति की सीमा नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अद्भुत लगता है कि एक छोटे बच्चे ने ऐसे भयंकर बड़े असुर को उठाकर फेंक दिया। यह बहुत अद्भुत बात है। और रूप गोस्वामी यह भी बताते हैं कि एक भक्त दूसरे भक्त को आशीर्वाद दे रहे थे वृंदावन में, कृष्ण भगवान के पवित्र कर कमल तुम्हारी रक्षा करें, जिन्होंने कि गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठाया था मानो कि एक बच्चा एक छोटे से गेंद को उठाता है। बच्चे तो खेलकूद करते रहते हैं, गेंद को उठाते हैं, फेंकते हैं आसानी से बिना सोचे हुए, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। ऐसे कोई प्लानिंग करके, सोच समझ के, बड़ी योजना बनाकर कि कैसे उठाया जाए, आगे से उठाएंगे, तुम उधर से पकड़ो, मैं उधर से पकड़ूंगा, और फिर दम लगा के चलो एक साथ में सब लोग बोलो, ऐसे नहीं। आसानी से बस उठाया और आसानी से ऊपर भी धारण कर लिया। ये है भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति। और फिर तीसरा जो ऐश्वर्य है वो है यश, प्रसिद्धि। कौन है जो भगवान को नहीं जानता? अगर कोई भगवान में विश्वास भी नहीं करता हो फिर भी वो भगवान में जानता है, क्यों? वो कहता है कि भगवान नहीं है, मतलब भगवान शब्द को तो कहता है बारंबार, मतलब भगवान के अस्तित्व को नकारने से ही यह सिद्ध होता है कि वो भगवान को जानता है, कि भगवान है। तो चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, भक्त हो या ज्ञानी या जो भी हो, हर एक व्यक्ति भगवान को जानता है। केवल भगवान के नाम क्या है भले ये बात को वो नहीं जाने, भगवान का नाम कृष्ण है या क्या है, उनके गुण क्या है भले इस बात को इतने विस्तार से नहीं जाने या बिल्कुल नहीं जाने, लेकिन भगवान तो सबसे प्रसिद्ध है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अमल चरित्र की वजह से प्रसिद्ध है उसको यशस्वी कहते हैं, जिसका यश है। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना अमल है कि वो तो सबसे यशस्वी हैं। रूप गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि कृष्ण का यश जो है वो चंद्र के किरणों की तरह है जो कि हर जगह फैलता है। जहां भी चंद्र के किरणें फैलती हैं वहां पर वो अंधकार को नष्ट करती हैं। इसलिए जहां भी कृष्ण के यश का गुणगान होता है, यश का वर्णन होता है, वहां पे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है,
वहां पर भौतिक संसार के जो भी दुख हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो शांति, शुद्धता और ऐश्वर्य की सफेदता वो सब जगह फैल जाती है। मतलब चंद्रमा के किरण सफेद रंग के होते हैं और कृष्ण का यश चंद्रमा के किरणों की तरह है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि यश ये सफेद रंग का है। मतलब सुंदर काव्यात्मक दृष्टि से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि किस प्रकार से जब कृष्ण भगवान का गुणगान होता है तो सभी कुछ शुद्ध बन जाता है, सफेद बन जाता है। वो वर्णन करते हैं कि एक बार नारद मुनि कृष्ण भगवान के यश का गायन कर रहे थे तो शिवजी ने इस गायन को सुना तो तुरंत उनका नीलकंठ जो है वो सफेद हो गया। आप जानते हैं कि शिवजी को नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया था, लेकिन पूरी तरह से पान नहीं किया, अपने कंठ में उसे धारण किया और इस वजह से उनका कंठ नील रंग का हो गया और उनको नाम नीलकंठ रखा गया उस लीला के बाद में। तो लेकिन जब भगवान जब शिवजी ने नारद मुनि के मुख से भगवान श्री कृष्ण के गुणगान सुने तो नीला रंग सफेद हो गया। और बलराम जी एक समय जब किसी भक्त के मुख से कृष्ण भगवान के यश का गुणगान सुन रहे थे तो उनकी नीले रंग की धोती जो है वो सफेद हो गई। अभी बलराम जी की धोती तो नीले रंग की होती है, कृष्ण भगवान तो पीतांबर पहनते हैं, लेकिन कृष्ण का यश सुनकर वो सफेद हो गया उनकी धोती। और जब गोपियां यमुना के तट में थीं और वो कृष्ण का गुणगान करती थी जैसे कि 24 घंटे वो किया करती थी, तो अचानक उन्होंने देखा कि यमुना जी का जल जो है वो सफेद हो गया है, तो तुरंत मंथन करने लगी, मक्खन निकालने लगी यमुना जी से। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के यश जो हैं वो सफेद चांद के किरणों के बराबर हैं, और जहां भी हम भगवान श्री कृष्ण के यश को गाएंगे वहां पे नाना प्रकार के शांति, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और शांतता वगैरह फैल जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यश जो है वो भी अनंत है। इसके बाद में अगला गुण है श्री, मतलब सौंदर्य। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में क्या कहना, अनंत है, जितना वर्णन किया जाए उतना कम। और वर्णन से कृष्ण भगवान के सौंदर्य को कहा नहीं जा सकता। जब तक हम कृष्ण भगवान के सौंदर्य की अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे, और कृष्ण भगवान को साक्षात देखने के बाद भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सौंदर्य को देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि द्वारका में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल के अंदर जा रहे थे और वहां पर जो भी खंभे वगैरह हैं, जमीन सब हीरे मोतियों के बनाए होते हैं तो सब चमकते हैं, तो उन चमकते हुए खंभों में उन्होंने अपना ही प्रतिबिंब देखा और आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये सुंदर सुंदर पुरुष कौन है, इतना सौंदर्य कि मुझे लगता है कि मैं इसका आलिंगन कर लूं। फिर कृष्ण भगवान सोचे, अरे ये तो मैं हूं, लेकिन फिर भी इतना सौंदर्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हालांकि भगवान कृष्ण भगवान है, फिर भी उनका सौंदर्य भी उन्हीं को भ्रमित कर देता है, इतना सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का है। राज महिषियां या द्वारका में भगवान की जो रानियां थीं वो सब लक्ष्मी देवियां हैं। लक्ष्मी देवी के अलग अलग रूप हैं और लक्ष्मी देवी का और एक नाम है चंचला।
क्यों?
चंचल एक एक स्थान में रहती नहीं है, एक व्यक्ति के पास ज्यादा समय रहती नहीं है, भगवान के पास रहती है, इसलिए भगवान का और एक नाम है चंचलापति। चंचला को भी अचंचल कर देते हैं। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि द्वारका में कृष्ण भगवान का सौंदर्य इतना था कि ये चंचल लक्ष्मी देवियां जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे एक क्षण भी उनको छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके सौंदर्य से इतना आकर्षित होती थी। और जब सुबह भगवान श्री कृष्ण को उठना पड़ता था और फिर अपने नाना प्रकार के राज के कारोबार को संभालने के लिए जाना पड़ता था, धार्मिक क्रियाओं को करने जाना पड़ता था, तो उनको बहुत बुरा लगता था। कभी थोड़े क्षण तो कृष्ण को हमसे दूर जाना पड़ेगा, हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे बाहरी रूप से। तो इस प्रकार से द्वारका के रानियां जो कि लक्ष्मियां थी, वो भी कृष्ण भगवान के सौंदर्य से इतने आकर्षित होते थे। श्रीमद् भागवत में उद्धव विदुर जी को वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने उसी दिव्य रूप को इस पृथ्वी लोक में प्रकट करने आए थे और उनके सौंदर्य से सभी को आकर्षित करने आए थे। और उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान का सौंदर्य इतना अनंत है, इतना महान है कि उनके दिव्य शरीर के ऊपर जो भी आभूषण गहने इत्यादि हैं, वो उनके सौंदर्य को बढ़ाने के बजाय कृष्ण भगवान का सौंदर्य उन आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ाता है। मतलब बात उल्टी हो जाती है। लोग आभूषण, अच्छे कपड़े वगैरह अपने आप को सजाते झजाते क्यों हैं? अपने अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो आभूषण, कपड़े, कपड़ों का काम यह होता है। लेकिन कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके गहने उनका सौंदर्य क्या बढ़ाएंगे? बात उल्टी हो जाती है कि कृष्ण भगवान के सौंदर्य से आभूषण सुशोभित हो जाते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो उद्धव ऐसे वर्णन करते हैं विदुर जी को। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कितना है। और फिर पांचवा है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण को तो सभी कुछ मालूम है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, मैं तो त्रिकालज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सभी को जानता हूं, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। भगवान को और एक नाम है सर्वज्ञ, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं। अगर सर्वज्ञ नहीं होंगे तो कैसे किस तरह के भगवान हुए? अगर ऐसी कोई बात है जो कि भगवान नहीं जानते हैं या जिनका ज्ञान उनके पास नहीं है, तो फिर वो भगवान हो ही नहीं सकते। और भगवान सब कुछ क्यों जानते हैं? ये कैसे संभव है कि भगवान सब कुछ जानते हैं? क्योंकि वो सब जगह है, सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। इसलिए हम सब के विचारों को जानते हैं। हमारा विचार क्या है, इससे पहले कि हम जाने, भगवान जानेंगे क्या ये व्यक्ति इस चीज की इच्छा कर रहा है, फिर हम जानते हैं, हाँ मुझे मेरी ये इच्छा है। तो भगवान हमारे हरेक प्राणी की इच्छा को जानते हैं, हरेक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं। हृदय की बात तो दूर है। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान श्री कृष्ण हरेक अणु के भीतर स्थित हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर एक अणु में विराजे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हर एक अणु के भीतर क्या चल रहा है भगवान को मालूम है, क्योंकि वो सब जगह है। हम सर्वज्ञ क्यों नहीं है, क्योंकि हम सर्वव्यापी नहीं है। उस कमरे में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम यहां हैं वहां नहीं है। हाँ, हम कैमरा इत्यादि इन चीजों का संशोधन करके हमारे ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहां तक अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे? क्या हम हर एक व्यक्ति के हृदय में हम निवास कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं क्या हम जान सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम जान सकते हैं हम जो रसगुल्ला खा रहे हैं कितना स्वादिष्ट है, लेकिन रसगुल्ला जब अंदर जाता है तो अंदर उसका पचन कैसे होता है, पचन होने के बाद उसमें उससे फिर खून का परिवर्तन कैसे होता है, वो हम नहीं जानते। पचन होता है इतना हम जानते, लेकिन कैसे होता नहीं जानते। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें है, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान दोनों है। इसलिए श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में बताया गया है, जन्मादि अस्यत उन्वयात इतरतश्च अर्थेश्व अभिज्ञ स्वराट अभिज्ञ, पूरी तरह से चेतन है वो, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वेदों के स्रोत हैं, वेद मतलब ज्ञान, वेदों के स्रोत हैं, वेदों के रचयिता हैं, वेदों के उद्देश्य हैं और वेदों का विषय है। वेदों का की रचना करने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम इन वेदों को का पाठ करके इनके आदेशों का पालन करके भगवान श्री कृष्ण को जान सके। वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः वेदांतकृत वेदविद् एव चाहम्। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हालांकि सर्वज्ञ हैं, फिर भी जब लीला करते हैं, यहां पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होते हैं, तो किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सांडिपुनि मुनि से जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, या गंगादास पंडित के टोल में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे कि निमाय पंडित ने किया चैतन्य महाप्रभु की लीला में। हाँ, बीच बीच में अपने अद्भुत शक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि निमाय पंडित ने केशव कश्मीर को हराया था, अद्भुत ज्ञान का प्रदर्शन किया उन्होंने, अद्भुत बुद्धि का, और उस समय केशव कश्मीर तो बिल्कुल भ्रमित हो गए और जाके प्रार्थना करने लगे सरस्वती देवी से, आज की आपने मेरा इतना अपमान किया है एक छोटे से बालकों के हाथ से। तो उस समय सरस्वती देवी उनके सपने में आई और कहने लगी कि बुरा मत मानो, जिन्होंने तुम्हें हराया है वाद में वो मेरे आराध्य देव हैं, इसे तुम भी उनको जान लेना, उनकी उपासना करना और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और आखिरी जो ऐश्वर्य उनका है वो है वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य की अवस्था में होते हुए भी, सारे भोग के साधन उनके पास होते हुए भी, फिर भी वो निरासक्त रहते हैं। त्रिभेर गुणमेर भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण इन तीन गुणों के स्वामी हैं, तीन गुणों के प्रभाव में कभी पड़ते नहीं हैं। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इन तीन गुणों के अधीन हैं, वो लोग स्वयं तीन गुणों के अधीन हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान तीन गुणों के परे हैं, इसलिए इस संसार से पूरी तरह से निरासक्त हैं और कभी भी इस भौतिक संसार का भोग करने की इच्छा उनकी नहीं होती है। वो तो केवल अपने अंतरंगा शक्ति का भोग करते हैं और उस समय भी पूरी तरह से निरासक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, अचानक अक्रूर जी बुलाने आए, बस छोड़कर चले गए, आए नहीं वापस। पूरी तरह से निराशक्त। हाँ, हृदय में तो सोचते रहे अपने ब्रजवासियों के बारे में, लेकिन वापस गए नहीं। मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, द्वारका से अपने धाम लौट के चले गए, बिल्कुल निराशक्त। और जब भौतिक लीला, भौतिक जगत में लीला समाप्त हुई, तो ये सोचा नहीं कि मेरे भक्त कितने दुखी हैं, अर्जुन युधिष्ठिर सब शोक कर रहे मेरे लिए, समय हो गया मुझे जाना है, चले गए अपने धाम चले गए। अर्जुन निराश हो गए, युधिष्ठिर निराश हो गए, सारे पांडवों ने भी अपने राज्य को त्याग दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने सोचा नहीं, बिल्कुल निराशक्त थे। और द्वारका की जो रानियां थी, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इतने सुंदर थे, लक्ष्मी देवियों से भी ज्यादा सुंदर। उन्होंने नाना प्रकार के तरीकों से भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास किया और उनको वश में करने का प्रयास किया, अपने नाना प्रकार के बोलने से और जो अलग अलग तरह से, जिस जो भी तरह होते हैं जिनसे कि महिलाएं कभी कभी पुरुषों को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए। वो थे, अपने रानियों के साथ में रहते थे, लेकिन बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। जब थे उनके साथ लीला करते थे, जब लीला समाप्त करने का समय आता था तुरंत वहां से चले जाते थे। तो इस प्रकार से निराशक्त। एक बार थोड़ी गोपियां नदी पार करना चाहती थी, लेकिन उनके पास नौका नहीं था, तो क्या किया जाए, कोई नौके वाला भी नहीं था, तो पास में एक मुनि बैठे थे। तो मुनि ने कहा कि एक मंत्र का उच्चारण करो और तुम नदी पार कर पाओगे। तो कौन सा मंत्र है? मंत्र है कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी। अरे, कृष्ण तो रासलीला करता है इतने सारे हजारों गोपियों के साथ में, आगे चल के वो तो 16,108 रानियों को किसे विवाह करने वाला, नित्य ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? नहीं, अगर श्रद्धा से तुम मंत्र का जाप करोगे तो पानी पार कर पाओगे। तो कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी करके पानी पार कर गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण इतने सारे गोपियों के साथ में रास लीला करते हुए भी 16,108 रानियों से विवाह करने के बाद भी नित्य ब्रह्मचारी, निराशक्त पूरी तरह से। और भगवान श्री कृष्ण न केवल ऐश्वर्य से और भोग से निराशक्त थे, अपने यश से भी निराशक्त थे। कोई मेरा बदनामी करेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं। अपने भक्त के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए भगवान को उनका व्रत तोड़वाऊंगा। उस समय कृष्ण भगवान ने अपना व्रत तोड़ दिया कृष्ण के संरक्षण के लिए। कृष्ण भगवान मथुरा के रणभूमि को छोड़कर चले गए। जरासंध पीछे आ रहा था, काल यवन पीछे आ रहा था। अरे कायर हो तुम, क्षत्रिय हो या कौन हो, तुम अपना पीठ दिखा रहे हो युद्ध भूमि पर। लेकिन कृष्ण भगवान ने कुछ सोचा नहीं कि मेरी बदनामी होगी, मुझे लोग कायर कहेंगे, सोचा नहीं। लेकिन वो भगवान है, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध है रणछोड़ के नाम से। और जब जरासंध का वध किया भीमसेन ने, वो कृष्ण भगवान के तरकीब की वजह से हुआ, के कारण हुआ। लेकिन सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को दिया। वो ये नहीं सोचा कि चलो श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैंने जरासंध, मेरी वजह से जरासंध का वध हुआ, नहीं। निराशक्त, अपने को कोई यश नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बिल्कुल निराशक्त थे अपने यश से भी। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य उनके पास परिपूर्ण अनंत मात्रा में है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं और इसलिए वो सर्व आकर्षक होते हैं। यहां इस श्लोक में भी प्रचेतागण कह रहे हैं कि भगवान आपका ऐश्वर्य अनंत है,
इसलिए आप अनंत नाम से जाने जाते हैं। और आप वरदान भी दे सकते हैं तो अनंत वरदान दे सकते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे तो कोई साधारण वरदान नहीं पूछेंगे, अनंत वरदान पूछेंगे। और ये बुद्धिमानी की बात है। अगर टाटा बिरला के पास जाना है तो 5 पैसा दान क्यों मांगना है, लाखों में मांगना चाहिए। तो भगवान के पास जाएंगे और मांगे, भगवान मेरे परीक्षा में पास कर दो, थोड़े पैसे दे दो, तो मूर्खता की बात है। मांगना है तो अनंत वरदान मांगो, मांगना है तो ध्रुव महाराज जैसे मारा सारे ब्रह्मांड का राज मांगो, ये भी वास्तव में तुच्छ है। मांगना है तो कुछ आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति की मांगो। तो प्रचेता कर्ण बड़े बुद्धिमान है, कह रहे हैं हम तो ऐसे वैसे वरदान नहीं मांगेंगे आपसे, हम मांगेंगे तो अनंत वरदान मांगेंगे, क्योंकि आप अनंत है, आपकी शक्ति अनंत है, आपके ऐश्वर्य अनंत है और उनका नाम भी अनंत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु और कृष्ण में अंतर क्या है? है भी और नहीं भी है। इसलिए कि गुरु जीवात्मा होते हैं साधारणतः, कभी कभी भगवान भी गुरु के रूप में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी, जैसे अर्जुन के सामने हुए। लेकिन साधारणतः एक जीवात्मा होते हैं, इसलिए वो जीव है, भगवान विष्णु।